पिछले अध्याय में आपने देखा कि रूही रुद्र से दूर जाने के लिए निकल जाती है। रुद्र ऑफिस के लिए निकल जाता है। देवांश दिशा से मिलना चाहता है और उसे अपनी भावनाएं बताना चाहता है, लेकिन दिशा ने इस्तीफा दे दिया है। देवांश गुस्से में है। रुद्र के ऑफिस में अमन है और मीटिंग और मॉडल को फाइनल करने की बात चल रही है। चैप्टर 144। अब आगे, रुद्र का कैबिन। अमन कॉफी ले रुद्र के कैबिन में आता है और उसकी टेबल पर कॉफी रख देता है, जिसे देख रुद्र कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप कॉफी पीने लगता है, जिसे देख अमन भी कैबिन से निकल जाता है। वहीं रुद्र कॉफी पीते पीते मीटिंग वाली फाइल को भी चेक करने लगता है। कुछ देर में कॉफी खत्म कर और फाइल पढ़ रुद्र अपनी चेयर पर बैठ जाता है और अपना मोबाइल उठा उसमें रूही की फोटो को देखने लगता है। कुछ देर यूं ही रूही की फोटो को देखने के बाद वे उसकी फोटो को किस करते हुए कहता है, रू देखो ना, अभी कुछ देर पहले ही मैं तुम्हें किस करते आया हूँ और मुझे फिर से तुम्हारे होठों की याद आने लगी। रू पता नहीं क्या है तुम्हारे उन खूबसूरत होठों में, जिन्हें देख मैं चाहकर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और जितनी बार उन्हें देखता हूँ उतनी बार उन्हें खाने का मन करने लगता है। इतना बोल वे फिर से अपनी जुनूनी आंखों से रूही की फोटो को देख मोबाइल में ही रूही के होठों पर किस करते हुए बोला, रू अभी के लिए मैं इसके ही काम चला ले रहा हूँ, लेकिन रात में मुझे तुम और तुम्हारी खूबसूरत होंठ दोनों चाहिए। इतना बोल उसके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आ जाती है। तभी उसकी नज़र अपनी घड़ी पर जाती है, जिसे देख वे अपने मोबाइल को ऑफ कर अपनी चेयर से खड़े होते हुए तुरंत अपने कैबिन से निकल मीटिंग रूम की तरफ चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ देवांश के कैबिन में, देवांश जो अपनी आंखें बंद कर अपनी चेयर पर बैठा हुआ था, वे अचानक ही अपनी आंखें खोलता है और आंखें खुलते ही उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं, जिसके साफ साफ पता चल रहा था कि देवांश इस समय कितने ज़्यादा गुस्से में है। देवांश अपनी आंखें खोल अपनी लाल आंखों के साथ ही दिशा को याद करते हुए बोला, हाउ डे यू गुड गर्ल, हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस ऑफिस को छोड़कर जाने की? तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझसे दूर जा सकती हो? तुमने ये कैसे सोच लिया गुड गर्ल कि मैं तुम्हें इस ऑफिस से या खुद से कभी भी दूर जाने दूंगा? गुड गर्ल, तुमने इस ऑफिस को छोड़कर बिल्कुल भी सही नहीं किया। तुम जितनी भी कोशिश कर लो गुड गर्ल, तुम्हें इस ऑफिस में तो दोबारा आना ही पड़ेगा और इस बार तुम्हें इस ऑफिस के साथ साथ मेरे भी करीब आना होगा गुड गर्ल। इतना बोल वे कुछ सोचते हुए बोला, मुझे मालूम है गुड गर्ल कि तुमने सिर्फ और सिर्फ उस रात की मेरी हरकत की वजह से ये ऑफिस छोड़ा है और मुझसे दूर जाने की कोशिश की है, पर तुम चिंता मत करो गुड गर्ल, आज मैं तुम्हारी सारी गलतफहमी दूर कर दूंगा। आज मैं तुम्हें सब कुछ क्लियर कर दूंगा। उसके बाद मुझे मालूम है तुम मुझसे गुस्सा नहीं होंगी और खुशी खुशी मुझे एक्सेप्ट कर लोगी। इतना बोल उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि उसने दिशा के लिए बहुत कुछ सोच लिया था, जिसके बाद उसे पूरा उम्मीद था कि उतना सब कुछ करने के बाद दिशा, तो क्या दिशा की जगह अगर कोई और भी लड़की होती तो कभी मना नहीं करती। वैसे भी उसे खुद के चार्म पर भी काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि उसे कोई लड़की मना नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी उसे मालूम था कि उसकी गुड गर्ल बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग है, इसलिए तो उसे अपनी गुड गर्ल इतनी पसंद है। लेकिन फिर भी आज वे खुद को इस तरह रेडी करने वाला था कि उसकी गुड गर्ल आज उसे रिजेक्ट कर ही नहीं सकती। इतना सोच वे अपने ओवर कॉन्फिडेंट में अपने असिस्टेंट मयंक को कॉल कर उसे कुछ समझाता है कि उसे क्या क्या करना है। सब कुछ समझाने के बाद वे मयंक से दोबारा बोला, मयंक तुम मिस दिशा को कॉल करके वहाँ आने को बोलो, और तुम मिस दिशा को वहाँ कैसे भेजो दे ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, और हाँ, सारी तैयारियाँ अच्छे से और जल्दी हो जानी चाहिए। अगर मुझे कोई भी कमी दिखी या मेरी गुड गर्ल को कुछ भी पसंद नहीं आया तो तुम अपनी सज़ा के लिए तैयार रहना। देवांश की बात सुनकर मयंक डरते हुए बोला, जी जी बॉस, आपने जैसा कहा है सब कुछ वैसा वैसा हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। देवांश की बात सुनकर मयंक तुरंत कॉल कट कर देता है। वहीं कॉल कट होने के बाद मयंक फिर से धड़ाम की आवाज़ के साथ चेयर पर बैठते हुए खुद से बोला, ओ गॉड, आपने किस मुहूर्त में मुझे इस शैतान का असिस्टेंस बना दिया? इनके चक्कर में मुझे क्या क्या काम करना पड़ता है? अब मैं मिस दिशा को क्या कहकर वहाँ भेजूँ? इतना बोल वे अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। तभी उसे याद आता है कि उसके पास बहुत कम टाइम है, जिसे याद कर मयंक तुरंत होश में आता है और किसी को कॉल कर उसे सारी बात समझा देता है कि उसे कैसे और क्या क्या करना है। और सारी बात समझाने के बाद मयंक उस आदमी से बोला, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना बॉस मुझे तो नहीं छोड़ने वाले, लेकिन साथ ही साथ अगर कोई भी गलती हुई तो बॉस तुम्हारी जान लेने के पहले भी एक बार नहीं सोचेंगे। मयंक की बात सुनकर वे आदमी बोला, सर आप चिंता मत करो, आपने जैसा जैसा बोला है सब कुछ वैसा वैसा ही हो जाएगा, मैं खुद वहां जाकर सारी तैयारियां करवाता हूँ। उस आदमी की बात सुनकर मयंक बोला, हाँ ये सही रहेगा, गुड। इतना बोल वे कॉल कट कर देता है। अब उसे ये टेंशन हो रही थी वे मिस दिशा को किस तरह वहां भेजे। इतना सोच वे अपने दिमाग पर जोर देने लगता है। काफी देर सोचने के बाद मयंक के दिमाग में एक आइडिया आता है और वे कुछ सोच तुरंत दिशा को कॉल लगा देता है। वहीं दूसरी तरफ अनाथ आश्रम में, दिशा जो कि शीशे के पास खड़ी होकर लिप बाम लगा रही थी, क्योंकि देवांश का ऑफिस छोड़ने के बाद अब उसे कहीं ना कहीं तो जॉब करना ही था, इसलिए वे रेडी होकर अपना रिज्यूम देने नए ऑफिस में जाने के लिए रेडी हो रही थी। लेकिन तभी उसका फोन रिंग होता है, जिसे देखते शतुरंज फोन के पास जा बेड पर रखते अपने फोन को उठाती है और फोन उठाने के बाद वे फोन पर नाम देखती है और फोन पर देवांश की असिस्टेंट मयंक का नाम देख वे खुद से कहती है, ये मयंक मुझे फोन क्यों कर रहा है। इतना बोल वे कुछ सोचते हुए कॉल रिसीव कर लेती है। कॉल रिसीव करते ही उधर से मयंक बोला, हेलो मिस दिशा, क्या आप अभी होटल रंग महल में आ सकती हैं? एक्चुअली आपने जो कल अपना रिजाइन लेटर दिया था उस पर आपके कुछ सिग्नेचर चाहिए, जब तक आप उस पर साइन नहीं करती तब तक हम आपका रिजाइन लेटर एक्सेप्ट नहीं कर सकते। दिशा की बात सुनकर दिशा कुछ सोचते हुए बोली, ठीक है मैं अभी आ जाती हूँ, लेकिन जो करना होगा जल्दी करना क्योंकि मुझे और कहीं भी जाना है। दिशा की बात सुनकर मयंक खुश हो जाता है और तुरंत बोलता है, हाँ हाँ मिस दिशा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। इतना बोल वे कॉल रख देता है। वहीं दिशा भी कुछ देर में रेडी हो होटल के लिए निकल जाती है,
इस बात के अनजान कि वहाँ उसके साथ क्या होने वाला है।